ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा में यह विधेयक पिछले साल दिसंबर में ही पारित हो चुका है। विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए के कामकाज को कुशल बनाना है। विधेयक में एनडीएमए और एसडीएमए को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के बजाय राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदाओं के आकार और पैमाने में बदलाव हुआ है और प्रतिक्रियाओं को भी उसी अनुसार बदलना होगा। संसद ने बॉयलर्स बिल 2024 पारित कर दिया है। लोकसभा ने आज इसे मंजूरी दी। राज्यसभा ने पिछले वर्ष दिसंबर में ही इस बिल को पारित कर दिया था। यह बिल बॉयलर्स एक्ट 1923 को निरस्त करता है। यह कानून देश में बॉयलर के नियमन, भाप बॉयलर से विस्फोट के खतरे और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है। लोकसभा ने आज वित्त विधेयक 2025 पारित कर दिया। विधेयक में 35 सरकारी संशोधन किए गए हैं। इसका उद्देश्य टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि विधेयक में करदाताओं को सम्मान देने और कारोबारी सुगमता के लिए करों में राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नए आयकर विधेयक पर अगले मानसून सत्र में चर्चा होने की संभावना है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के नेताओं के साथ आज दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर बैठक की। इससे पहले आज सदन में सभापति ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि यह संसद की संप्रभुता, सर्वोच्चता तथा प्रासंगिकता से जुड़ा है। उन्होंने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की सराहना की। ओडिशा विधानसभा में आज कांग्रेस के 14 विधायकों में से 12 को कथित दुर्व्यवहार और विधानसभा के नियमों के उल्लंघन के मामले में 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्य सचेतक सरोज प्रधान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के सदन में पारित होने के बाद यह निर्णय लिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में अलगाववाद अब इतिहास बन चुका है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को प्रभावी ढंग से खत्म किया है। गृहमंत्री ने कहा कि हुर्रियत के 2 गुटों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अन्य गुटों से भी अलगाववाद का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ने का आग्रह किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में 60% से अधिक लोग 18 से 45 वर्ष के होते हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को 3% का नुकसान हो रहा है। श्री गडकरी ने बताया कि गुड समैरिटन योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों को ₹25,000 का इनाम दिया जाता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस वर्ष बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 32% की वृद्धि हुई है। इसमें कुल 1,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट पेश करने के बाद संवाददाता से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में 17% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में राज्य सरकार की प्रमुख योजना महिला समृद्धि योजना के लिए भी 5,100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। इनमें से एक माओवादी की पहचान सुधीर और सुधाकर के रूप में की गई है। इस पर 25,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। 2 अन्य माओवादियों पर 2,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। गाजा पट्टी में आज हुए इसराइली हमलों में 23 फिलिस्तीनी मारे गए। फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार गाजा में हमास के खिलाफ इसराइली सेना का अभियान फिर शुरू होने के बाद से लगभग 700 लोग मारे गए हैं। इसराइल के ताजा हमलों के कारण 2 महीने का संघर्ष विराम टूट गया है। इसराइली सेना ने सभी उत्तरी सीमावर्ती शहरों के हजारों निवासियों को पूरा क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच एएफसी एशियाई कप फुटबॉल 27 क्वालीफायर के तीसरे और अंतिम दौर का पहला मुकाबला आज शाम मेघालय के शिलांग में गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों को समान 1-1 अंक मिला। भारतीय पुरुष टीम ने आज आईएसटीएफ सेपक तकरा विश्व कप के नियमित संवर्ग में जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 6 दिवसीय यह खेल आयोजन आज संपन्न हो गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।